Bande Chaitanya Devantam Bhagavantam Yadichchaya Prasabham Narityate Chitram Lekarange Jadopyayam. I offer my respects to the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose desire I have become like a dancing dog, and although I am a fool, I have suddenly taken to the writing of Sri Chaitanya Charitamrita.
जिनकी कृपा के कारण हालांकि तो मैं एक मूर्ख हूँ लेकिन जो है मैं इस चैतन्य चरितामृत का लेखन का कार्य आरंभ किया है।
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र जय जय परमानंद जय नित्यानंद। लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हु इज नोन एज गौरसुंदर। I also offer my respectful obeisances unto Nityananda Prabhu, who is always very joyful.
मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनको गौर सुंदर बताया जाता है, और नित्यानंद प्रभु को भी प्रणाम करता हूँ, जो कि हमेशा आनंदमय रहते हैं।
Tomorrow is a very, very holy day. For the Gaudiya Vaishnavas.
कल का जो दिन है वो गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही पवित्र दिन है।
It is the disappearance day of Srila Raghunath Das Goswami, Srila Raghunath Bhat Goswami, and Srila Krishna Das Kaviraj Goswami.
वो कल जो है ये तीन जो भक्त हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनका तिरुभाव दिवस है।
Tomorrow during Srimad Bhagavatam class at the temple, as well as in the evening program at Borivali, we will just be discussing the sublime glories of Raghunath Das Goswami and Raghunath Bhatta Goswami.
कल सवेरे मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा में और शाम को बोरीवली के कार्यक्रम में भी रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की चर्चा की जाएगी।
These are very important subject matters. So everyone possibly please come for Srimad Bhagavatam class tomorrow at Radha Gopinath Mandir.
ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए सब लोग जो है ऐसा करें कि कल सुबह श्रीमद् भागवत क्लास में आवे मंदिर में।
This evening we would like to speak briefly on the infinite glories of Srila Krishna Das Kaviraj Goswami.
इस संध्या को हम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे।
This great empowered Vaishnav was the embodiment of philosophical understanding as well as utter humility.
ये महान वैष्णव जो हैं दार्शनिक समझ और पूर्ण रूप से नम्रता के मूर्तिमान स्वरूप थे।
It is through Krishna Das Kaviraj Goswami ji that the life and the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu are most proficiently presented to the world.
ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा ही है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षा जो है दुनिया को प्रदान हुई है।
This book, Sri Chaitanya Charitamrita, is to be considered the highest, the purest, and the most important of all scriptures on earth.
इस धरती पर सारे शास्त्रों में ये जो चैतन्य चरितामृत है ये सबसे बड़ा महान और सबसे ज्यादा शुद्ध शास्त्र माना जाता है।
It is the postgraduate study of the Srimad Bhagavatam.
ये श्रीमद् भागवत से भी ऊपर जो है इसका अध्ययन है।
It describes pure devotional service like no other literature.
इसमें शुद्ध भक्ति का ऐसा वर्णन किया गया है कि कोई किसी शास्त्र में नहीं किया गया है।
In Chaitanya Charitamrita itself, Kaviraj Goswami in his great humility has shared with us some of the eventful moments of his life.
चैतन्य चरितामृत में जो है नम्रता से कृष्णदास कविराज अपने जीवन के कुछ प्रसंग हमें बतलाते हैं।
He describes how he was born and raised in the Katwa district of West Bengal.
बताते हैं कैसे पश्चिम बंगाल के कटवा डिस्ट्रिक्ट में जो है उनका जन्म हुआ था।
The village where he was brought up is still worshipped as a holy place today.
जिस गांव में वो बड़े हुए थे वो अभी भी एक पवित्र स्थान की तरह पूजनीय माना जाता है।
He and his family were all very sincere devotees of Lord Krishna.
वो और उनके परिवार जो हैं श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे.
And they would especially be very fond of having wonderful Sankirtan festivals in their home.
और वो अपने घरों में जो है संकीर्तन का उत्सव मनाया करते थे.
On one occasion, they invited one of the great intimate associates of Lord Nityananda Prabhu to preside during a Sankirtan festival of chanting the holy name of God.
और एक अवसर पर नित्यानंद प्रभु के एक सहचर को उन्होंने निमंत्रण दिया कि संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए.
His name was Miniketan Ramdas.
उनका नाम था मिनिकेतन रामदास.
He was such a wonderful devotee. In fact, he was one of the intimate cowherd boyfriends of Lord Krishna and Balaram in Goloka Vrindavan, who had incarnated in this form.
वो लोग गोलोक वृंदावन में कृष्ण और बलराम के एक ग्वाले थे जो कि इस रूप में अवतरित हुए थे.
And he would love to chant and dance and glorify his supreme master Nityananda Prabhu.
वो जो है बड़े प्रेम से नाचते थे और कीर्तन करते थे स्वामी नित्यानंद प्रभु के गुणगान में.
And he was so playful that sometimes when people would offer obeisances to him, he would jump on their back and slap them with his flute.
और वो इतने ज्यादा मजाकी थे कि जब कोई उनको प्रणाम करता तो उसके ऊपर चढ़ जाते थे और अपनी मुरली से उसको मारते थे.
And sometimes he would play his flute like a cowherd boy.
और कभी-कभी अपनी मुरली जो है ग्वाले की तरह बजाते थे.
And it was one day, the priest of Kaviraj Goswami's family's temple, whose name was Gunarnava Mishra, he was worshipping the deity of Krishna.
उसमें एक पुरोहित जो है उन्नावत मिश्रा वो कृष्ण की मूर्ति की आराधना कर रहे थे.
At that time, Miniketan Ramdas came in to the temple.
उसमें मिनिकेत रामदास मंदिर में प्रवेश किया.
And Gunarnava Mishra offered him no respect but continued to worship the deity of Krishna.
और गुणार्णव मिश्रा ने उनको आदर न दिखाते हुए मूर्ति की आराधना जारी रखी.
Now, according to the standards of Vaishnavism, this is very inappropriate.
ये वैष्णव स्तर के अनुसार जो है ये बहुत गलत है.
It is described even by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. If one is worshipping the Lord in the temple, if a special exalted Vaishnav comes in, if there is no one else to greet him, then one must stop the worship of the deity and make preference to worshipping the Lord's devotee.
Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami batate hain ki agar koi vishesh Vaishnav aata hai aur uska aadar satkar ke liye koi nahi hai, to jo puja kar raha hai pujari usko puja band karke pehle uska avagat karna chahiye.
Now Miniketan Ramdas, he was a humble devotee who expected no respect for himself, but he could understand that he was the representative of Lord Nityananda, and this offense was actually toward Lord Nityananda.
Miniket Ramdas apne liye to koi aadar nahi chahte the, lekin wo jante the ki wo Nityananda Prabhu ke pratinidhi hain aur ye aparadh jo hai wo Nityananda Prabhu ke prati hai.
So out of compassion, he became angry and rebuked the pujari.
Aur daya karte hue wo krodhit ho gaye aur usko daantne lage.
Krishna says in Bhagavatam, Mad Bhakta Puja Adika, that if you want to please me, you must please my devotee.
Srimad Bhagavatam mein Krishna Bhagavan kehte hain, agar mujhe prasan karna chahte ho, to mere bhakt ko prasan karna hoga.
Sadhunam hridayam paham, sadhunam hridayam paham. The Lord explains that if you want to love me, you must love the sadhus who have given their life to me.
भगवान बताते हैं कि अगर आप मुझसे प्रेम करना चाहते हैं तो उनसे प्रेम करना होगा साधु से जिन्होंने पूरा जीवन मेरे लिए अर्पण किया.
To try to show our love to God without respecting his devotees is not at all pleasing to the Lord.
अगर हम भगवान से अपना प्रेम बताने का प्रयास कर रहे हैं और भक्तों को प्रेम नहीं कर रहे तो भगवान को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते.
Anyways, the Sankirtan festival carried on. Miniketan Ramdas, he accused Gunarnava Mishra that just as when Balaram approached the sages of Naimasharanya and Roma Harshan Sutta remained on his Vyasasan and offered him no respects, you are like this.
Miniketan Ramdas ne aisa kaha unse ki jis tarah se Roma Harsha jo hai apni gaddi par baithe rahe the Balaram ji ke aane par, tum bhi usi prakar ke ho.
Even Roma Harshan Sutta was a guru sitting on the Vyasasan. And he was reciting the transcendental glories of the Lord, the scriptures. But because he did not step down to offer his respects to an exalted person, he was condemned. And Balaram himself killed him for this offense.
और हालांकि वो श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे, वो गुरु थे व्यासासन पर, लेकिन क्योंकि वो अपनी गद्दी से नहीं उठे इसीलिए उनकी भर्त्सना की गई और अंत में बलराम जी ने उनको मार डाला.
So we can understand from this story that one of the most vital and essential principles of spiritual life is to learn how to properly receive and respect saintly persons.
तो हम इस कथा से समझ सकते हैं कि सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि कैसे साधु पुरुषों का आदर सत्कार किया जाए.
Toward the end of this Sankirtan festival, this incident was brought to the attention of Krishnadas Kaviraj Goswami's brother.
और जब उत्सव खत्म हुआ तो कृष्णदास कविराज के भाई को इस बात की सूचना दी गई.
And Miniketan Ramdas and he had a quarrel.
और मिनिकेत रामदास और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ इस बात पर.
Because the brother was saying that I accept Sri Chaitanya Mahaprabhu as my worshipable Lord, but I have very little faith in Lord Nityananda Prabhu.
क्योंकि उनका भाई कह रहा था कि मैं चैतन्य महाप्रभु को तो आराधनीय मानता हूँ, लेकिन मुझे नित्यानंद प्रभु में कोई ज्यादा श्रद्धा नहीं है.
When Kaviraj Goswami heard his brother speaking like this to one of the most blessed servants of Nityananda, he became very disturbed.
जब कृष्णदास कविराज ने सुना कि उसका भाई इस तरह से नित्यानंद प्रभु के एक सखा से ये कह रहा है, तो वो बड़े क्रोधित हो उठे.
And he told his brother that to glorify Lord Chaitanya, but not to glorify his most intimate devotee and friend Nityananda, is like the philosophy of half of a hen.
उन्होंने कहा कि अगर आप चैतन्य महाप्रभु की जो है गुणगान कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु के गुणगान नहीं कर रहे, तो ऐसे है कि ऐसे आधा आधा मुर्गे की बात हो जाती है.
This philosophy of half of hen is somebody wants to take the back half of the hen and cut off the front, because the back half gives eggs which makes money, but the front half you have to feed it, so you lose money. So if you cut one side off, then you only make no investment, only profit.
ऐसे कि जैसे कोई सोचे कि मुर्गी का पीछे के भाग से अंडे आते हैं और आगे के भाग से तो खर्चा करना पड़ता है, तो अगर हम उसका भाग कर दें तो सिर्फ पीछे का भाग रखें, आपको खर्चा नहीं होगा और अंडे भी मिल जाएंगे.
But it is just common sense, if you cut the hen in half, you kill it.
ये तो साधारण बात है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप उसको मार डालेंगे.
Similarly, by worshipping the Lord, but not worshipping and respecting his intimate devotees, you kill your devotion.
उसी तरह से भगवान की आराधना करना और भगवान के भक्तों की आराधना नहीं करना, ये जो है अपनी भक्ति को हम नाश कर रहे हैं.
In fact, Kaviraj Goswami told his brother, better you be an atheist and not believe in Lord Chaitanya than be a hypocrite and reject Lord Nityananda.
कृष्णदास कविराज बोलने के अपने भाई से कि ज्यादा अच्छा है कि आप नास्तिक बनो और चैतन्य महाप्रभु में विश्वास नहीं रखो, बजाय इसके कि आप नित्यानंद प्रभु को इस तरह ठुकरा दो.
Upon hearing the condition of Kaviraj Goswami's brother, Miniketan Ramdas broke his flute and left.
और ये बात सुनने के बाद मिनिकेत रामदास ने जो है अपनी मुरली को तोड़ दिया और चले गए.
And Kaviraj Goswami's brother at that moment fell down from his spiritual life.
और उसी समय जो है उनका भाई जो है वो अपने आध्यात्मिक जीवन से गिर पड़ा.
The greatest offense in spiritual life is to discredit the great souls who have given their lives in the loving service to the Lord.
सबसे बड़ा अपराध आध्यात्मिक जीवन में यह है कि जिन महात्माओं ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए किया गया है, उनकी भर्त्सना करना.
In fact, Chaitanya Mahaprabhu called this the mad elephant offense.
चैतन्य महाप्रभु ने इसको पागल हाथी का अपराध बताया है.
You can spend your whole life growing the flower of devotion in the garden of your heart.
आप ये अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं कि भक्ति का जो है पौधा को उगाने में.
But if you let a mad elephant in a garden, whatever has been accomplished is destroyed.
लेकिन अगर एक पागल हाथी को प्रवेश करने देंगे तो सब कुछ किया कराया नष्ट हो जाएगा.
In the same way, if we subject ourselves to blaspheming or discrediting great personalities, we destroy all our spiritual credits.
उसी तरह से अगर हम महात्मा पुरुषों की निंदा करते हैं तो हमारी सारी आध्यात्मिक प्रगति नष्ट हो जाती है.
That night, Krishnadas Kaviraj Goswami explains, he took rest.
और उस रात्रि को जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने विश्राम किया.
And he had a beautiful dream.
उनको बहुत सुंदर स्वप्न दिखाई पड़ा.
In that dream, Lord Nityananda Prabhu appeared to him in a most beautiful and extraordinary way.
और उस समय जो है नित्यानंद प्रभु बहुत ही सुंदर रूप में उनके स्वप्न में प्रकट हुए.
He was dressed as a cowherd boy.
वो एक ग्वाले के रूप में वस्त्र धारण किए हुए थे.
He had a beautiful, deep, blackish complexion.
उनका बहुत सुंदर जो है इस तरह नीला सा रंग था.
Every limb of his body was extraordinarily beautiful.
उनके शरीर का रंग जो है बहुत ही सुंदर था.
His eyes were like blooming lotus flowers.
उसके आंखें जो है वो कमल के फूल के समान थे.
He had beautiful golden armlets and ankle bells.
और उनके पैरों में सुंदर नूपुर थे और हाथ में कंगन थे.
He had a beautiful garland of fragrant flowers.
और सुंदर सुगंधित फूलों की माला थी उनके गले में.
He was wearing silk cloth and silk turban upon his head.
और सिल्क के जो कपड़े और सिल्क की पगड़ी बांधे हुए थे.
He was holding a beautiful red stick.
और हाथ में एक लाल रंग की छड़ी लिए हुए थे.
There were bumblebees on all four sides of his feet.
उनके पैरों के चारों ओर जो भंवरे थे.
And he was moving left and right like an intoxicated elephant.
एक पागल हाथी की तरह जो है वो दाएं बाएं चल रहे थे.
And as he was swaying back and forth, intoxicated in ecstatic love, in a deep voice he was chanting, Krishna, Krishna.
और ऐसा करते करते वो गहरी आवाज में कृष्णा कृष्णा गा रहे थे.
And there were cowherd boys also at his feet, dancing, playing horns, playing cymbals, and chanting along with him, Krishna, Krishna.
और उसके साथ दूसरे ग्वाले भी थे, वो भी इस तरह से गा रहे थे, कृष्णा कृष्णा.
When Kaviraj Goswami saw this beautiful vision, he prostrated himself at the lotus feet of Lord Nityananda.
अब कविराज गोस्वामी ने ये देखा तो नित्यानंद प्रभु के दंडवत प्रणाम करने लगे.
And Nityananda Prabhu bestowed his mercy upon him.
और नित्यानंद प्रभु ने अपनी कृपा उन पर बौछार कर दी.
He spoke, get up, get up.
वो बोले कि उठो उठो.
And when Kaviraj Goswami stood up and looked at this beautiful, ecstatic sight, the Lord began to speak.
और जब उन्होंने ये देखा और उठे तब भगवान जब बोलना शुरुआत किया.
He said, get up, do not fear.
बोले उठो घबराओ मत.
Go to Vrindavan and all your desires will be fulfilled.
वृंदावन जाओ और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी.
The dream disappeared.
Sapna adrishya ho gaya.
And Krishnadas Kaviraj Goswami came back to consciousness just at the beginning of the early morning.
Aur bilkul subah ke samay jo hai wo punarchetit ho uthe.
And although he was of a very very old age, practically an invalid.
Aur wo bahut hi vriddh avastha mein the.
Immediately upon rising in the morning, he left for Vrindavan.
Aur jo hai uthte hi subah jo hai Vrindavan ki or chal pade.
He began that long arduous journey of over 1,000 miles.
और हजारों मील से भी ज्यादा जो है उनका रास्ता था वृंदावन जाने.
All the while simply meditating on the extraordinary mercy of Nityananda Prabhu.
और वो रास्ते भर में जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा पर ध्यान कर रहे थे.
Nityananda Prabhu is the incarnation of Lord Balaram and he is the original spiritual master.
नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं और वो आदि गुरु हैं.
By giving this instruction to Kaviraj Goswami, he became his shiksha guru.
और ये आज्ञा देने से वो उनके शिक्षा गुरु बन गए.
Kaviraj Goswami glorifies Lord Nityananda in so many beautiful and wonderful ways.
कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के बहुत सुंदर श्लोकों में वंदना करते हैं.
He explains the innermost feelings of his heart.
वो अपने हृदय की अंतरंग भावनाओं को प्रकट करते हैं.
Which exemplifies the supreme qualification of all Vaishnavas, that of humility.
वो जो है सब वैष्णव सबसे प्रमुख चीज है नम्रता बताती है.
He says, I am more sinful than Jagai and Madhai.
बोलते हैं जगाई और मदाई से भी ज्यादा पापी हूँ.
And I am lower than the worm in stool.
और विश्राम पड़े हुए कीड़े से भी ज्यादा गिरा हुआ हूं.
इफ एनीवन हियर्स माय नेम ही विल लूज ऑल पायस क्रेडिट्स इन हिज लाइफ.
अगर कोई मेरा नाम सुन भी लेता है तो उसके सारे पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे.
एंड इफ एनीवन स्पीक्स माय नेम ही बिकम्स सिनफुल.
कोई मेरा नाम लेते ही है तो वो पापी बन जाएगा.
बट बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु ही हैज गिवन मी residence in Vrindavan.
लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने मुझे वृंदावन में वास दिया है.
And he has given me the satsang of such great souls as Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Raghunath Das Goswami.
और इतने महात्मा पुरुषों का संग दिया है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी.
This is the most inconceivable mercy of the Lord upon the most sinful of all beings.
ये भगवान की जो है इस पापी पर जो है अचिंत्य कृपा है.
Srila Prabhupada explains that when Kaviraj Goswami is revealing his heart in this way, he is not just speaking some fanciful poetry, but he is honestly revealing his own feelings toward himself.
Srila Prabhupada batate hain ki jab ye aise kehte hain to wo sirf koi kavita nahi bana rahe hain lekin vastav mein unko apne bare mein kya lagta hai wahi batla rahe hain.
In the material sense, people are always trying to boost their ego and have a high impression of themselves.
Bhautik drishti mein dekhna jaye to har aadmi apne aap ko uncha uthane ka prayas karta hai.
And the more they do that, the further they go away from God.
और जितना वो करते हैं उतना ही भगवान से दूर चले जाते हैं.
But Kaviraj Goswami is saying he's more sinful than the most sinful jagayan madhai, and he's lower than a worm in stool.
लेकिन कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं जगाई और मदाई से भी ज्यादा बड़ा पापी हूँ और विष्टा में.
Anyone who hears my name loses all piety, and anyone who speaks it becomes sinful.
और कोई मेरा नाम लेता है तो वो जो है सब पुण्य कर्म खो देता है और वो पापी बन जाता है.
By such humility, by such feelings about oneself, one can completely, utterly accept the shelter of the mercy of the Lord.
ऐसी नम्रता भावना के द्वारा ही व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की शरण को ग्रहण कर सकता है.
To the degree Kaviraj Goswami thinks in such a humble way about himself, to that very degree, he could glorify with complete devotion the supreme, magnificent mercy of Lord Nityananda Prabhu and Lord Chaitanya Mahaprabhu.
जितना ही वो अपने आप को इतना गिरा हुआ बतलाते हैं उतना ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के गुणगान ज्यादा कर सकते हैं.
This is why Chaitanya Mahaprabhu said that it is humility alone that can purchase the heart of God.
इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नम्रता के द्वारा ही भगवान के हृदय को जीत सकते हैं.
Anything else we do, if it is not offered with humility, it gives very little or no pleasure to Krishna.
अगर हम कुछ भी करते हैं अगर वो नम्रता नहीं है तो भगवान को कुछ प्रसन्नता नहीं प्रदान करते.
Whether you offer Krishna a leaf, a fruit or flower, or whether you build magnificent temples and give charity to millions of people, if it is not offered with humility, it has no flavor for Krishna.
अगर कृष्ण को हम फल फ्रूट कुछ अर्पण करते हैं या बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं अगर वो नम्रता नहीं है तो भगवान को कोई प्रसन्न नहीं करते.
But if it is offered with sincerity and a humble heart, Krishna will accept it with the greatest pleasure.
अगर सच्चे दिल से नम्र हृदय से अर्पण की गई है तो भगवान बड़े आनंद से उसको स्वीकार करेंगे.
So Krishna Das Kaviraj, when he arrived in Vrindavan, he took shelter of the six Goswamis.
वृंदावन में आने के पश्चात उन्होंने छह गोस्वामियों का आश्रय ग्रहण किया.
श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भाट गोस्वामी, गोपाल भाट गोस्वामी एंड श्रील जीव गोस्वामी.
ये छह गोस्वामियों के उन्होंने आश्रय ग्रहण किया.
इन फैक्ट ऑफ ऑल द ऑथर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभुज बायोग्राफी, इट वॉज कृष्ण दास काविराज हु फर्स्ट ग्लोरिफाइड दी सिक्स गोस्वामी.
तो सब जो है लेखकों में कृष्णदास कविराज ही पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने छह गोस्वामियों की वंदना की है.
At one time, he made his residence at Shri Radha Kund.
एक बार उनका निवास स्थान श्री राधा कुंड में था.
रघुनाथ दास गोस्वामी was the assistant secretary of Sri Chaitanya Mahaprabhu for the last 16 years of Mahaprabhu's earthly leela.
श्री चैतन्य महाप्रभु की धरती की लीला में आखिरी 16 साल के लिए जो है रघुनाथ दास गोस्वामी उनके सहकारी थे.
एंड इन द एसोसिएशन ऑफ हिज गुरु स्वरूप दामोदर, ही वाज कांस्टेंटली इन द एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड.
और अपने गुरु स्वरूप दामोदर के साथ में वो हमेशा भगवान के संगम में थे.
रघुनाथ दास गोस्वामी, हु वी विल स्पीक ऑफ टुमारो, ही केम टू वृंदावन आफ्टर महाप्रभु एंड Swarup Damodar left this world.
Raghunath Goswami jo hai wo jab Mahaprabhu aur Swarup Damodar chale gaye tab wo aaye Vrindavan.
And on the request of the Vaishnavas of Braj Bhumi, he would every day speak about the beautiful pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
और ब्रजभूमि के वैष्णव के निवेदन पर वो रोज जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में बोलते थे.
And Kaviraj Goswami was so fortunate that he would attend those satsangs.
और कृष्णदास कविराज इतने भाग्यशाली थे कि वो उन सत्संग को सुनते थे.
And he was very, very learned and full of devotion.
और वो बहुत ही विद्वान थे और भक्ति से पूर्ण थे.
He explains how the glorious Goswamis, they were so merciful to him that he was constantly absorbed in hearing and chanting the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
वो बताते हैं कि ये गोस्वामी मेरे प्रति इतनी कृपालु थे कि वो हमेशा मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रवण में लगा रहता था.
Seeing his purity, the Vaishnavas of Vrindavan requested him to write the story of Mahaprabhu's life, especially emphasizing his later pastimes.
तो इनकी शुद्धता को देखते हुए कि वृंदावन के वैष्णव ने निवेदन किया कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में लिखिए, विशेष अंत्य लीला.
In this regard, Krishnadas Kaviraj Goswami explains that in Vrindavan there was one great devotee of the name Ananta Acharya.
Krishnadas Kaviraj Goswami बताते हैं कि वृंदावन में एक भक्त थे आनंद आचार्य.
He was a direct disciple of Srila Gadadhar Pandit.
वो श्रीला गदाधर पंडित के शिष्य थे.
Ananta Acharya was a reservoir of all devotional qualities.
Ananta Acharya में सारे भक्ति के गुण थे.
He had a particular disciple whose name was Pandit Haridas.
उनका एक शिष्य का नाम था पंडित हरिदास.
Pandit Haridas was a priest at the Govindadev temple of Rupa Goswami.
वो रूप गोस्वामी के गोविंददेव मंदिर में पुजारी थे.
He was an embodiment of all spiritual excellences.
उसके अंदर यह सब आध्यात्मिक गुण थे.
He explains that Pandit Haridas, he would always be absorbed in reading from the Chaitanya Bhagavat of Vrindavan Das Thakur, which describes the beautiful life of Lord Chaitanya.
ऐसा बताया जाता है कि वो हमेशा श्री चैतन्य भागवत की जो है श्रवण में पढ़ने में लगे रहते थे.
And he would induce all the other devotees to come and hear the beautiful narration of Mahaprabhu's leela.
वो सबको यह प्रोत्साहन देते कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में श्रवण करें.
And he was so pure and learned that when he would speak, which he constantly would, the beautiful pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, people would be struck with love of God.
और वो इतने ज्यादा जो है विद्वान थे और इतने प्रेमी थे कि जो भी कोई उनसे सुनता था वो भगवत प्रेम से भर जाता था.
Pandit Haridas, he would always accept the good qualities of Vaishnavas.
पंडित हरिदास जो है हमेशा वैष्णव के अच्छे गुण को स्वीकार करते थे.
He would never hear the faults of anyone.
वो किसी के भी जो है दुर्गुण को नहीं सुनना चाहते थे.
And he would give his life and his soul in any way possible to just please the devotees of the Lord.
भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार रहते थे.
Guru Maharaj explains that this is called adosha darshi. That every living being, every human being, has so many good points and so many faults.
हर मानव में बहुत सारे सद्गुण और बहुत सारे दुर्गुण होते हैं.
A sincere devotee of the Lord will only accept a person's good qualities.
एक सच्चा भक्त जो है हमेशा अच्छे गुणों को ही स्वीकार करेगा.
He will not hear the faults of any devotee of the Lord.
वो किसी दूसरे भक्त के जो है दुर्गुण सुनना ही नहीं चाहेगा.
A devotee is like a bumblebee.
एक भक्त जो है भंवरे के समान है.
A materialistic person is like a fly.
और भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो मक्खी के समान है.
The bumblebee, even if he's in an area of terrible sewage and garbage, if there's one flower, he will neglect paying any attention to anything except that flower, and he will drink the nectar from that flower.
अगर भवरा जो है कीचड़ में भी है, गंदगी में भी है, विष्ठा में भी, अगर इसमें अच्छा है कोई फूल होगा तो सब कुछ त्याग करके वो फूल के पास पहुंचकर उसका अमृत ग्रहण करेगा.
In this way, sincere souls, they will always ignore and not take in any seriousness the faults of another devotee, but are always anxious to drink the nectar of their good qualities.
इसी तरह से भगवान के सच्चे भक्त जो हैं किसी भी दूसरे भक्त के दुर्गुण नहीं देखते बिल्कुल भी और उनके सद्गुण सुनना चाहते हैं.
But a fly, even if he's in a beautiful, fragrant rose garden.
लेकिन एक मक्खी जो है अगर वो एक सुंदर बगीचे में भी है.
If there's one piece of stool on the ground,
अगर जमीन पर थोड़ी सी विष्ठा भी गिरी होगी तो
he will ignore all roses and drink the nectar of the stool.
वो सब गुलाबों को छोड़ के बस वो विष्ठा खाने में लग जाएगी.
So devotees must follow in the footsteps of Pandit Haridas.
तो भक्तों को पंडित हरिदास का अनुसरण करना चाहिए.
Because of these qualities he was so dear to the Lord.
इस गुण के कारण भगवान को अति प्रिय थे.
Pandit Haridas approached Krishnadas Kaviraj and asked him to kindly write a book explaining the later pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Pandit Haridas ne Krishnadas Kaviraj se nivedan kiya ki aap pustak likhiye Chaitanya Mahaprabhu ke antya leela ke
baare mein. Such other great devotees of Vrindavan such as Bhugarbha Goswami, Yadavacharya
और ऐसे महान भक्त जैसे कि भूगर्भ गोस्वामी यादवाचार्य
गोविंद गोसाई they all approached all of the Vrindavan Gaudiya Vaishnavas they all approached him and requested kindly that you write the pastimes the life and teachings of Chaitanya Mahaprabhu
सब वैष्णव उनके पास आए और उसे निवेदन करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षा के बारे में आप पुस्तक लिखिए
Kaviraj Goswami was thinking I have no qualification to do this
कृष्णदास कविराज सोच रहे थे कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है ये करने के लिए
बट बिकॉज इट वॉज द ऑर्डर ऑफ द वैष्णवस ही कुड नॉट रिफ्यूज देम
क्योंकि वैष्णवों की आज्ञा थी वो उसको ठुकरा नहीं सकते थे
सो अलोंग विद मेनी अदर वैष्णवस ही वेंट टू द टेंपल ऑफ मदन मोहन
सब वैष्णवों के साथ मदन मोहन जी के मंदिर गए
मदन मोहन इज ए ब्यूटिफुल मूर्ति ऑफ कृष्णा हु रिजाइड्स इन वृंदावन
मदन मोहन भगवान का सुंदर विग्रह है जो वृंदावन में रहता है
He was originally installed by Vajranab, the great grandson of Lord Krishna.
मूलतः रूप से वो भगवान के पौत्र वज्रनाभ द्वारा स्थापित किया गया था.
Sanatan Goswami built a beautiful temple for him.
और सनातन गोस्वामी ने उनके लिए सुंदर मंदिर निर्माण किया.
It was the first major temple of Vrindavan.
वो वृंदावन का प्रमुख मंदिरों में से पहला था.
So Kaviraj Goswami was thinking, before beginning any serious work of devotion. One must first have the order and the blessings of the Vaishnavas, and one must have the confirmation of the blessing of Krishna.
वो ऐसा सोच रहे थे कि कुछ भी ऐसे कार्य करने से पहले वैष्णव का आशीर्वाद और आज्ञा होनी चाहिए और वही मूर्ति से भी उसके प्रोत्साहन होना चाहिए.
With great, great humility and devotion, he went to Madan Mohan Temple.
बड़ी नम्रता और भक्ति भावना से मदन मोहन जी के मंदिर गए.
And he began to very sincerely, from the core of his heart, pray to Madan Mohan to kindly. If he so desired, grant him permission to write the life and teachings of Mahaprabhu.
तो प्रार्थना करने लगे कि अगर आपकी ऐसी इच्छा हो तो मुझे जो है आज्ञा दीजिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में.
Just as he was praying in this way, a beautiful garland fell from the neck of Madan Mohan.
ऐसे प्रार्थना कर रहे थे तो मदन मोहन जी के गले से एक माला गिर पड़ी.
And the pujari, whose name was Goshai Das. Picked up that garland and placed it around the neck of Kaviraj Goswami.
पुजारी गोसाई दास जो है वो माला को उठाकर कृष्णदास कविराज के गले में डाल दिए.
At that time, all the devotees assembled began to chant, "Hari Bol,
Hari 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 Bol."
And then Krishnadas Kaviraj began to write.
उसके पश्चात कृष्णदास कविराज लिखना शुरू किए.
श्री चैतन्य चरितामृत.
चैतन्य चरितामृत लिखना शुरू.
And he explains that it is not me writing this book.
वो बोल रहे थे कि मैं नहीं लिख रहा ये पुस्तक को.
Because he had received the blessings of the Vaishnavas and Krishna, Chaitanya Mahaprabhu was personally writing this book through him.
क्योंकि उन्हें वैष्णव और कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्त था तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही ये पुस्तक लिख रहे थे.
He explains that I am just like a wooden puppet doll.
बोलते मैं तो एक जो है कठपुतली की गुड़िया के समान हूँ.
And Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is simply moving my hands.
और वो जो मेरे हाथ को घुमा रहे हैं.
To write these beautiful pastimes.
जिसे कि सुंदर लीलाओं को लिख सकूं.
He explains that he began this book when he was in His 90s.
वो उन्होंने पुस्तक लिखना तब शुरुआत की जब उनकी उम्र 90 साल से भी ज्यादा थी.
He was in his late 90s.
90 से भी ज्यादा उनकी उम्र थी उस समय.
A time when people are at the most ready to die.
और ज्यादा से ज्यादा ऐसा समय होता है कि लोग मरने की तैयारी कर रहे होते हैं.
It was at this point that he began such an incredible project of writing. the most important authoritative book on the life of Chaitanya Mahaprabhu.
और ऐसे समय पे उन्होंने इतना बड़ा जो है ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखने का आरंभ किया.
He writes in Chaitanya Charitamrita that I am an old man. I'm practically blind. I'm suffering from rheumatism. My limbs are shaking. I do not know how I am writing this book, but somehow by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, it is being written.
वो बताते हैं कि मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, मैं देख नहीं सकता ठीक से, मेरे कई बीमारी हैं, मेरे अंग जो है वो काम पर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं लिख पा रहा हूँ.
This is the mercy of the Lord. How, as Kaviraj Goswami explains, Mukam karoti vacha lam bhangum langayati girim yat kripatam aham bande sri gurum dinadharanam. By the mercy of Guru and Krishna, even if a man is lame, he can cross mountains.
Krishna Kaviraj Goswami batate hain ki bhagwan ki aur guru ki kripa se gunga vyakti jo langda vyakti hai wo bhi parvat paar kar sakta hai.
Even if he is blind, he can see the farthest stars in the sky.
Agar wo andha bhi hai to aakash ke dur dur ke tare dekh sakta hai.
And even if he is deaf, he can speak beautiful poetry.
Aur agar wo behra hai to bhi sundar kavita rachna kar sakta hai.
Krishnadas Kaviraj Goswami wrote Chaitanya Charitamrita on the banks of the holy place of Radhakund.
Radhakund ke pavitra tat par unhone Chaitanya Charitamrita ka lekhan kiya.
To this very day, his bhajan kutir is present.
आज भी उनकी भजन कुटीर वहाँ मौजूद है.
And also, Kaviraj Goswami, he was always immersed in simply serving the Vaishnavas and giving all credit to them.
वो हमेशा वैष्णव की सेवा में लगे रहते और उनको सारा श्रेय प्रदान करते.
Our own Guru Maharaj, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, very much followed in the footsteps of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami.
हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद भी उनके चरण कमलों का अनुसरण करते थे.
On the order of his Gurudev, in his elderly years of 70 years old, he embarked on beginning a world Krishna consciousness movement.
और अपने गुरु की आज्ञा पर जब उनकी उम्र 70 साल थी तब उन्होंने कृष्ण भावना आंदोलन का शुरुआत किया.
And at this age he began to write the Srimad Bhagavatam, to translate Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, Bhakti Rasamrita Sindhu, Sri Ishopanishad, Upadeshamrita, and many other great Vedic literatures.
और ऐसी वृद्ध अवस्था में उन्होंने इन सब शास्त्रों का जो है अनुवाद कार्य आरंभ किया.
And Srila Prabhupada explains, he says that in the mood of Krishnadas Kaviraj Goswami, I am also suffering from rheumatism. I'm very old. My limbs are shaking. But somehow by the mercy of Guru and by the mercy of Gauranga, these literatures are being written for the benefit of all humanity.
Srila Prabhupada batate hain ki Krishnadas Kaviraj ke saman hi mere bhi jo hai ang kaanp rahe hain, meri vriddh avastha hai, lekin fir bhi ye Vaishnava ki kripa se ye likha ja raha hai.
So the great contribution of this illustrious Vaishnav is such a vital and important part of all the lives of the devotees of Lord Chaitanya.
ये जो उनका जो योगदान है वो चैतन्य प्रभु के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है.
Krishnadas Kaviraj Goswami, he ends each chapter of Chaitanya Charitamrita with these words.
Chaitanya Charitamrita ka har adhyay ka ant wo is shabdon se karte hain.
Shri Rupa Raghunatha Padayaras Chaitanya Charitamrita Kahe Krishnadas. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Shri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps.
तो वो इस तरह से कहते हैं कि रूप और रघुनाथ की कृपा का अभिलाषा करते हुए उनके चरण चरण का अनुसरण करते हुए मैं ये चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ.
From this beautiful history of Kaviraj Goswami, we can understand what is truly the qualification of one who is empowered by the Lord.
इस कथा से हम समझ सकते हैं कि क्या योग्यता है जो व्यक्ति जो कि भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान किए गए हैं.
One who takes the position of the humble servant of the servant of the servant of the servant.
जो कि एक नम्र सेवकों के सेवकों का सेवक की स्थिति को ग्रहण करता है.
What is it that the Lord cannot do through those who have surrendered with all humility at the lotus feet of his devotees?
भगवान क्या है जो कि नहीं कर सकते उन भक्तों के द्वारा जो कि उन भक्तों के प्रति समर्पित हैं.
कृष्णदास काविराज गोस्वामी इन चैतन्य चरितमृता एक्सप्लेन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन द ग्लोरीज एंड द पावर ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण.
कृष्णदास काविराज गोस्वामी बार बार जो है भगवान के पवित्र नाम के गुणगान करते हैं.
ही एक्सप्लेन्स दैट द नेम ऑफ कृष्ण इज सो पावरफुल that anyone who chants it sincerely will attain ecstatic love of God.
वो बताते हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि सच्चे दिल से जो भी गाएगा उसको भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी.
He explains in Chaitanya Charitamrita the most vital instructions to all humanity.
चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य चरितामृत में वो मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आज्ञाएं प्रदान करते हैं.
The dialogue between Chaitanya Mahaprabhu and Sarvabhauma Bhattacharya.
सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप जो है
इन विच चैतन्य महाप्रभु एस्टैब्लिशेस द हाईएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति एज द अल्टीमेट फिलॉसफी ऑफ द वेदस
जिसमें वो स्थापित करते हैं कि वेद की जो सबसे ऊंचा दर्शन है भक्ति योग.
ही एक्सप्लेन्स द डायलॉग बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड प्रकाशानंद सरस्वती
उसमें वो प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु के बीच में भी वार्तालाप की चर्चा करते हैं.
इन विच चैतन्य महाप्रभु एस्टैब्लिशेस the Mayavad philosophy's limitations and the superiority of worship of the personality of Godhead with pure love.
जिसमें बताते हैं कि मायावाद शास्त्र जो है वो सीमित है और भगवान की आराधना कैसे श्रेष्ठ है.
He explains the beautiful dialogue between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai.
और श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो वार्तालाप है वो का भी वर्णन करते हैं.
In which there is no literature which describes step by step how bhakti progresses to the highest level of the love of the brijbasis.
और ऐसे कोई जगह नहीं है जहां पर कि कदम कदम से बताया गया कि कैसे भक्ति जो है सबसे उच्च स्तर ब्रजवासियों के प्रेम तक पहुंचती है.
Up to the point of the ecstatic loving emotions of Sri Radharani and the gopis of Braj.
यहां तक कि श्रीमती राधा रानी और गोपी और भगवान कृष्ण के स्तर तक यहां पर वर्णन है.
He explains the dialogue between Chaitanya Mahaprabhu and Sanatan Goswami.
वो सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप इसकी भी चर्चा करते हैं.
Which took place in the holy land of Prayag.
जो कि प्रयाग के पवित्र भूमि में हुआ था.
For 2 months, Chaitanya Mahaprabhu at the Dashashwamedha Ghat explained to Sanatan Goswami the most important basic principles of establishing one's relationship with Krishna.
दशाश्वमेध घाट पर 2 महीने तक उन्होंने भगवान से अपने संबंध स्थापित करने के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन किया है.
I'm sorry. That instruction took place in Banaras. Kashi.
वो शिक्षा तो है वास्तव में बनारस में काशी में दी गई.
It was his dialogue with Rupa Goswami that took place in Prayag at the Dashashwamedha Ghat.
और Rupa Goswami से उनका वार्तालाप जो है प्रयाग में हुआ था.
And there for 10 days Chaitanya Mahaprabhu planted the seed of the highest knowledge in which Rupa Goswami wrote the foundation of all bhakti shastras.
और उन्होंने रूप गोस्वामी वो बीज आरोपण किया जिसके द्वारा उन्होंने कई शास्त्र लिखे भक्ति के विषय में.
Which includes भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलामणि उपदेशामृता एंड सो मेनी अदर ग्रेट लिटरेचर.
इसमें उपदेशामृता उज्ज्वल नीलामणि और भक्ति रसामृत सिंधु जैसे कई शास्त्र आ जाते हैं.
इन दिस वे कृष्णदास काविराज गोस्वामी हैव गिवन द मोस्ट सब्लाइम एसेंशियल टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु टू द वर्ल्ड.
इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के जो है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है चैतन्य चरितामृत में दिए गए हैं.
चैतन्य चरितामृत वाज रिटन इन द मोस्ट परफेक्ट एंड प्रिस्टीन संस्कृत पोएट्री.
और वो जो है बहुत ही सुंदर बिल्कुल संस्कृत कविता के रूप में लिखा गया है.
एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस ग्रेट लिटरेचर इज परफेक्टली सपोर्टेड by the original Vedic literatures.
और इसका हर एक शब्द जो है वैदिक शास्त्र द्वारा जो है प्रोत्साहित किया गया है.
But the conclusion of the Chaitanya Charitamrita is the conclusion of the life and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Shri Chaitanya Charitamrit ka jo ant nishkarsh hai, wo Shri Chaitanya Mahaprabhu ke jo nishkarsh hai, wahi hai.
Which is that the ultimate perfection of life can easily be obtained in this age of Kali Yuga by simply worshipping the Lord, by chanting His holy name.
Aur wo ye hai ki jivan ki param siddhi jo hai bhagwan ki aradhana karne se ho sakti hai, jo ki naam sankirtan ke dwara.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Although there is so many beautiful stories, so many extraordinary miracles, so much deep, profound philosophy, the essence of Chaitanya Charitamrita is simply to serve the Lord's devotees and congregationally chant His holy name.
हालांकि कई शिक्षाएं और दर्शन शास्त्र दिए गए हैं, लेकिन अंत में निष्कर्ष ये है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना नाम संकीर्तन के द्वारा.
It is so simple and so sublime.
ये इतना सरल है और इतना उच्च भी है.
Kaviraj Goswami explains that if one simply has faith that by worshipping Lord Chaitanya and Lord Nityananda and chanting their holy names, one will undoubtedly attain ecstatic love.
चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कबीर बताते हैं कि अगर व्यक्ति को सिर्फ श्रद्धा है कि चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु की आराधना करके और नाम कीर्तन करके व्यक्ति को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए.
We accept these words as our life and soul.
हम इन शब्दों को अपना जीवन का सब कुछ मान लेते हैं.
श्री हरि नाम संकीर्तन की
जय.
So let us celebrate this glorious day of the disappearance of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, whose samadhi is at the Radha Damodar Temple in Vrindavan by chanting the holy name of Krishna.
तो हम उनका तीर्थभाव दिवस जो है, जिनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर में है, हम नाम संकीर्तन के द्वारा कर सकते हैं.
And in this wonderful celebration that we will all observe tonight, we must know that the chanting of the holy name is not an empty ritual.
हमें समझना चाहिए कि भगवान का नाम संकीर्तन सिर्फ कोई रीति रिवाज नहीं है.
The Lord reveals Himself through His name according to the sincerity in which we approach Him.
भगवान अपने नाम में उसी रूप में प्रकट होते हैं जितने सच्चाई दिल से हम आते हैं.
We should chant the holy name with great attention.
हमें बड़े ध्यान पूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए.
With intense feeling.
पूर्ण भावनाओं के साथ.
We should cry out for the shelter of the name.
हमें नाम के आश्रय के लिए पुकारना चाहिए.
And we should chant so loudly that we fill the whole world with this pure and divine vibration.
हमें इतने जोर से गाना चाहिए कि पूरे दुनिया में ये शुद्ध जो है स्वर फैल जाए.
Kardama Muni ji will explain to you how we will be dancing in the proper style of Sri Chaitanya Mahaprabhu as we are chanting Krishna's holy name.
तो अभी ये नृत्य बताया जाएगा किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के प्रसन्न के लिए करना है.